ये मन कितना चंचल है, एक सेकंड में इधर का उधर चला जाता है, उधर का उधर जाता, कभी हिमालय पर्वत जाता है तो कभी दक्षिण समुद्र में घुस जाता है, कभी अमेरिका जाता है तो कभी हिंदुस्तान में जाता है। ये मन की वेग बहुत तेज है, मन की गति पकड़ नहीं पाते। जो वेग में मन को भी पछाड़ सके अथवा पवन को अपनी मुट्ठी में बंद कर सके अथवा आदि शून्य माया तत्व से आगे निकल सके, इस प्रकार आपका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी किसी के वश की बात नहीं है। किसके? भगवान विष्णु सच्चिदानंद परमात्मा के। आपके संबंध का पूरा ज्ञान केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। एकमात्र आप ऐसे हैं, आप ही ऐसे हैं जो स्वयं को जान सकते हैं और अन्य को भी आप ही वह ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। यही कारण है कि मैं भी अब वह ज्ञान पाने के लिए व्यग्र हूँ, उत्साहित हो रहा हूँ। आप एक बार मुझे वो ज्ञान प्राप्त कराकर मेरे कौतूहल को शांत कीजिए, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। हे देव, आप ही जीव मात्र के आदि कारण हैं, संसार के भ्रमरूपी गज को मारने वाले सिंह आप ही हैं, समस्त देवगण आपकी आराधना करते हैं, आप ही जगत नायक हैं। और मैंने सुना है कि यदि आपकी महिमा को देखा जाए तो वो इतना अधिक है कि मुझसे आपके पास खड़े होने की योग्यता ही नहीं है। परंतु वही विचार कर मैं संकोच करूं और आत्मज्ञान के बोध के संबंध में आपसे प्रार्थना करने में डरूं, तो उस बोध की प्राप्ति के लिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। चारों ओर चाहे कितनी भी अधिक समुद्र की नदियां और समुद्र क्यों ना भरे पड़े हो, पर चातक की दृष्टि में, जो चातक पक्षी होता है उसकी दृष्टि में ये सब जलाशय, ये जल सब बेकार है, क्योंकि उसके लिए उपयोगी तो वही जल होता है जो मेघों से टपकता है। इस प्रकार है प्रभु, गुरु तो सर्वत्र है, परमात्मा तो सर्वत्र है, गुरु तो सर्वत्र है, पर हे श्री कृष्ण, मेरी गति केवल आप ही हैं। अब आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी विभूति के बारे में बतलाइए। 16वें श्लोक के अंदर बोलते हैं अर्जुन कि हे देव, आपकी विभूतियां तो सभी है, पर आप मुझे वह विभूतियां बतलाएं जो अपनी दिव्य शक्ति से सर्वत्र व्याप्त हो रही है। अपनी जिन विभूतियों से आपने इस अनंत लोक को व्याप्त कर रखा है, उनमें से प्रमुख विभूतियों के नाम आप कृपा करके मुझे बतलाइए। हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार जानूं और क्या समझकर आपका चिंतन करूं, यह आप मुझे कृपा पूर्वक बतलाइए। यदि यह कहा जाए कि यह समस्त संसार तो आप ही हैं, तो फिर चिंतन करने का तो कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसलिए अभी आपने संक्षेप में जो अपने भाव बतलाए हैं, उनका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आप अपने वे भाव मुझे स्पष्ट करके बतलाएं जिनके द्वारा आपका चिंतन करना मेरे लिए कठिन ना हो, और इस प्रकार मुझे आपकी प्राप्ति भी सुगमता से हो जाए। हे भूतपति, मैंने आपकी जिन विभूतियों के बारे में पूछा है, कृपा पूर्वक उन विभूतियों का वर्णन करें। इस पर शायद आप यह कहें कि एक बार तो उन विभूतियों के संबंध में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, इसलिए अब उन्हीं विभूतियों का मैं बार बार वर्णन क्यों करूँ। तो हे जनार्दन, आप इस शंका को रति भर भी महत्व न दें, क्योंकि यदि किसी को जरा सा भी साधारण अमृत पीने को मिले तो भी उसके लिए कोई बस करो रहने दो नहीं कहता, और फिर वो अमृत भी कैसा, जो कालकूट का सगा भाई है। और मृत्यु से भयभीत देवता ने अमृतत्व प्राप्त करने की लालसा से जिसका पान किया था, परंतु जिसके पान कर लेने पर भी ब्रह्मा के एक ही दिवस में 14 इंद्र अमर राजाओं के सिंहासन आसीन होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जो अमृत इस प्रकार क्षीर सागर से निकला हुआ एक साधारण रस है और जिसके विषय में लोगों की यह मिथ्या भ्रांति फैली हुई है कि वह अमृत लोगों को अमृतत्व प्रदान करने वाला है, जब ऐसा नामधारी अमृत का मधु अंश भी लोगों को यथेष्ट नहीं मिल पड़ता और उसे पाने के लिए लोग पीने से लोग तृप्त नहीं होते तथा उसकी इतनी चीज की मधुरता भी जब इतना अधिक सम्मान पाती है, तो फिर आपके इन बोध वचनों का तो कहना ही क्या, आपके इन ज्ञान रूपी वचनों का तो कहना ही क्या, ये तो साक्षात परमामृत है। इसके लिए न तो मद्राचल की मतनी बनाकर ही फिराया गया और न शीर से सागर कोई मथा गया है, वह तो अनादि स्वयं सिद्ध है। यह न तो पतला है न गाढ़ा ही है, न इसमें रस अथवा गंध का ही कहीं नाम है, और इसका स्मरण करते ही सहज में हर एक मनुष्य उसे पा सकता है। कौन सा ज्ञानामृत है ना? इस अमृत का वर्णन सुनते ही समस्त संसार तत्वहीन हो जाता है और सुनने वालों को ऐसी नित्यता प्राप्त होने लगती है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु की बात बिल्कुल मिट जाती है। ब्राह्याभ्यंतर मतलब भार अंदर सर्वत्र आत्मानुभव के महासुख की वृद्धि होने लगती है। अब यदि भाग्यवशात इस प्रकार का परमामृत सेवन करने के लिए प्राप्त हो जाए तो वह सद्य जीव को आत्मस्वरूप कर डालता है, और वह अमृत जब आप मुझे दे रहे हो तो यह संभव ही नहीं कि मेरा चित्त उसके लिए कहे कि बस कीजिए। तो देखो इन सारी बात का अर्थ यही है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो जो अमृत नाम से बोलते हैं कि जिसे देवता पान करते हैं, समुद्र मंथन से निकला, जिसके लिए मथनी बनानी पड़ी, मद्राचल लाए, कश्यप देवता बने, वासुकी नाग हुए और बड़े प्रयत्न से उसको मथा, तो उसका जो भाई था किसका, अमृत का, हलाहल विष, वो भी उत्पन्न हुआ, उससे संसार जलने लगा, मरने लगा, तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। तो ये कितने प्रयत्न से वो अमृत का पान किया, फिर भी झगड़े हुए देवता असुरों के। इस प्रकार वो अमृत तो खाली ब्रह्मा के एक दिन में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र गद्दी से चढ़ते और उतर जाते हैं, तो फिर अमर कहाँ हुआ, क्योंकि वहां से भी आना जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। पर ये जो ज्ञान अमृत है जो गुरु के द्वारा शिष्य को मिलता है और सिर्फ मनुष्य जीवन में मिलता है, उसकी तो तुलना ही नहीं है। अमृता को प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान अमृत के बारे में बतला रहे हैं भगवान, जीव को आत्मस्वरूप कर डालता है। और वो अमृत जब आप मुझे दे ही रहे हो, मतलब ज्ञान दे रहे हो सत्संग में, तो वह संभव ही नहीं कि वो मेरा चित उसके लिए कहे कि बस 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 गुरुदेव बस, अब मैं तो पेट भर गया अमृत से। हे महाराज, आपका नाम ही मुझे अत्यंत मधुर जान पड़ता है, जिस पर आपकी प्रत्यक्ष भेंट हुई है और आपकी निकटता का भी लाभ है। इसके अलावा आप मेरे साथ आनंद पूर्वक बातचीत भी होती है। ऐसी दिशा में है प्रभु, मैं क्या बतलाऊं कि यह परम सुख कैसा है। मेरे हृदय को इतनी अधिक संतुष्टि मिली है कि वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ इतना अवश्य मेरी समझ में आता है कि आपके मुखारविंद से इस परमामृत की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। बार बार मेरे को इस अमृत के बारे में सुनाओ। प्रतिदिन वही सूर्य उदय होता है, प्रतिदिन वही सूर्य उदय होता है, पर फिर भी क्या कोई कभी कोई उसके बारे में ये कहता है कि यह तो वही कल वाला बासा सूर्य है। सभी लोगों को पवन करने वाली अग्नि के बारे में कभी यह कहा जा सकता है कि अपावन हो गई है, अथवा अनवरत प्रवाहमान गंगा जल के बारे में कभी यह कहा जा सकता है कि बासा हो गया है, यह बासी हो गई है गंगा। जिस प्रकार जिस समय आपने अपने मुखारविंद से परमामृत वचन का लाभ कराया, उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ, ऐसा मालूम पड़ा कि आज शब्द ब्रह्म ने स्वयं ही मूर्तिमान होकर अवतार लिया है, अथवा चंदन के पेड़ में फूल ही भी लगे हैं और मैं उन फूलों का आनंद ले रहा हूँ। अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण के सर्वांग समाधान जन्य प्रेम के हिलने लगे। वे अपने मन में कहने लगे कि यह अर्जुन अब भक्ति और ज्ञान का भंडार बनने के योग हो गया है। जिस अर्जुन की योग्यता श्री कृष्ण ने इस प्रकार स्वीकार करनी पड़ी थी, उस अर्जुन के परम संतोष के कारण श्री कृष्ण के प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ा। किंतु उस प्रेम प्रवाह को बड़े यत्न से थाम कर श्री अनंत ने जो कुछ कहा, भगवान श्री ने जो कुछ कहा उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो 19वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने उस अर्जुन से इस प्रकार बातें करना शुरू किया कि मानो उन्हें वो याद ही नहीं रह गया कि पितामह मतलब ब्रह्मा के पिता हैं। वे बोले, बाबा पांडुसुत, तुमने अच्छी बात कही। इस अवसर पर भगवान ने अर्जुन को जो बाबा शब्द से संबोधित किया, उसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कारण कि वे स्वयं नंद के पुत्र थे ही नहीं कारण कि वे स्वयं नंद के पुत्र थे ही उस समय उनके मुख से यह शब्द प्रेमा अतिरेक के कारण निकल गया था। नंद बाबा को नंद बाबा कहते थे ना, इसलिए। अस्तु, फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुंदर सुनो, हे सुभद्रापति, तुमने मेरी विभूतियों के बारे में पूछा है, पर मेरी विभूति असंख्य है, जिनकी संख्या नहीं, बहुत सारी संख्या है। ये बात सत्य है कि वे समस्त विभूतियाँ मेरी हैं, पर वे इतनी अनगिनत है कि स्वयं मेरी बुद्धि भी उनकी गिनती नहीं कर सकती। जैसे कोई यह नहीं बतला सकता है कि मेरे अपने शरीर पर कितने रोम हैं, वैसे ही मैं अपनी विभूतियों को भी नहीं गिन सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मुझे स्वयं ही इस बात का ठीक ठीक पता नहीं होता कि मैं कितना बड़ा और कितना व्यापक हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी केवल प्रमुख जो मुख्य मुख्य विभूतियां हैं वही बतलाता हूं। सुनो, हे मुकुटधारी अर्जुन, इन प्रसिद्ध विभूतियों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उनके द्वारा अन्य गौण विभूतियों के संबंध में भी जाना जा सकता है। जैसे मुट्ठी भर बीज आ जाने पर स्वयं वृक्ष मानो अपनी मुट्ठी में आ जाता है, अथवा समस्त उद्यान ही अपनी मुट्ठी में आ जाता है, अथवा फल फूल इत्यादि सब कुछ स्वतः प्राप्त हो सकते हैं, वैसे इन विभूतियों को देखने पर मानो समस्त विश्व ही देखा जा सकता है। और नहीं तो है धनुंदर, मेरा विस्तार, मेरा संपूर्ण विभूतियाँ अपार ही हैं। देखो, यह गहन इतना अपार है, पर वह भी मुझसे न जाने कहाँ समा जाता है, वो भी न जाने मुझ में कहाँ समा जाता है। मस्तक पर सुंदर काले केश धारण करने वाले और धनुर्विद्या में दूसरे शंकर, हे पार्थ सुनो। अर्जुन को उपमा दे रहे भगवान श्री कृष्ण कि शंकर के बाद धनुष धारण करने में धनुर्विद्या में दूसरे शंकर, हे पार्थ, हे अर्जुन सुनो, मैं प्राणी मात्र में आत्म रूप से निवास करता हूँ। ये जितने भी प्राणी हैं जिन्होंने प्राण धारण कर रखा है, सांस प्रश्वास छोड़ रहे हैं, जो जीव जंतु भी कहलाते हैं, उन सब में मैं आत्म स्वरूप से मैं ही स्थित हूँ, उन सब की आत्मा मैं ही हूँ। मैं प्राणी मात्र में आत्म रूप से निवास करता हूँ, प्राणियों के अंतकरण में भी मैं ही निवास करता हूँ। अब अंतकरण किसे कहते हैं? मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, और उनके ब्रह्म स्वरूप पर मेरा ही आवरण है, और उनके जो पर्दा पड़ा हुआ है वो मेरा ही आवरण है, मतलब मेरी माया का ही आवरण है। उसका आदि, मध्य और अंत सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि माया भी मेरी है, तो मैं माया से अभिन्न हूँ और माया आवरण करती है। जैसे मेघों के नीचे ऊपर अंदर बाहर सर्वत्र आकाश ही आकाश रहता है, वे आकाश रूपी होते हैं और उनका आधार भी आकाश ही होता है, और जब वे विलीन हो जाते हैं तब भी वे आकाश रूपी होकर रहते हैं। वैसे ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा गति सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा भगवान करे। इस प्रकार विभूतियों के द्वारा मैं नाना प्रकार का और व्यापक हूँ, इसलिए तुम अपनी समस्त चैतन्य शक्ति को, अपनी इंद्री श्रवण इंद्रियों को मैं एकत्र करके सुनो, इन कारणों के द्वारा इन विभूतियों को सुनो। अब हे सुभद्रापति, जिन विभूतियों का वर्णन करने के लिए मैंने तुम्हें वचन दिया है, उनमें से मुख्य विभूतियों को सुनो। इतना के कृपालु श्री कृष्ण ने फिर कहा कि द्वादश, द्वादश मतलब 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ये मेरी प्रमुख विभूति है, और प्रकाशमान पदार्थों में मैं रश्मि युक्त सूर्य हूँ, और श्रांग ने कहा कि 49, श्री श्रृंगी ने कहा कि 49 मरुदगणों में मैं मारीची हूँ, और तारागणों में मैं चंद्रमा हूँ, और गोविंद ने क्या कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवता में मरुत बंधु महेंद्र हूँ, इंद्र मतलब इंद्रियों में 11वीं इंद्रियां मन हूँ, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, तो इनका मन में ही हूँ। प्राणियों में जो स्वाभाविक चेतना शक्ति है वो सब भी मैं ही हूँ।